नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 सम्मेलन के लिए इटली यात्रा संपन्न। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने विश्व मंच पर भारत का दृष्टिकोण रखा। स्विट्जरलैंड में आज यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए। सिक्किम में लगातार हो रही तेज वर्षा से राज्य के उत्तरी भाग में कई जगह भूस्खलन, 1200 से ज्यादा पर्यटक फंसे। और आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट में आज शाम फ्लोरिडा में अंतिम ग्रुप मैच में भारत का मुकाबला कनाडा से। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली से आज सवेरे नई दिल्ली वापस आ गए हैं। उन्होंने अपनी यात्रा को सार्थक बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण G7 शिखर सम्मेलन था, जहां उन्होंने विश्व मंच पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा में G7 संगठन के अंतर्गत प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के साथ भारत की साझेदारी प्रगाढ़ हुई है। प्रधानमंत्री ने यात्रा के दौरान G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की सहित कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के अपुलिया में कल G7 शिखर सम्मेलन में संपर्क सत्र को संबोधित किया। उन्होंने भारत के ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इसकी परिकल्पना उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और स्वीकार्यता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत के AI मिशन के बारे में प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि इस प्रौद्योगिकी का उद्देश्य सभी की प्रगति और भलाई को प्रोत्साहन देना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक साझेदारी के संस्थापक सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। रईसुद्दीन और पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सांसदों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि संसद के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और फिर संसद के दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होने की परम्परा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9,03,00,000 किसानों के खाते में करीब 20,000 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अब तक 11 करोड़ किसानों के खातों में 3,00,000 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 18 जून को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं।
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए। गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। बस्तर संभाग के अबूझमाड में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिला रिजर्व बल और विशेष कार्यबल ने तलाशी अभियान शुरू किया था। मुठभेड़ के बाद भी क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। उत्तरी सिक्किम में पिछले 4 दिन से लगातार जारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी वर्षा के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है और उत्तरी सिक्किम की ओर जाने वाली सड़कों में दरारें पड़ गई हैं। इन घटनाओं से संपर्क व्यवस्था गंभीर रूप से बाधित हुई है, जिससे क्षेत्र में लगभग 1200 से अधिक पर्यटक फंसे हुए हैं। जोंगू क्षेत्र और उत्तरी सिक्किम को जोड़ने वाले साकलांग में नवनिर्मित पुल के ढहने से स्थिति और खराब हो गई है। सीमा सड़क संगठन ने प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अंतर्गत तत्काल यातायात बहाल करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग उत्तर से विधायक तेसम पोंगटे को सर्वसम्मति से राज्य की 8वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। अंतरिम अध्यक्ष निनांग एरिंग ने तेसम पोंगटे को राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की, क्योंकि इस पद के लिए कोई अन्य नामांकन प्राप्त नहीं हुआ था। लेकाबाली से विधायक कार्डो नईग्योर को राज्य विधानसभा का निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया है। विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ने प्रवासी भारतीय श्रमिकों, भर्ती एजेंट और ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल से सभी भारतीय बैंकों के नेट बैंकिंग के माध्यम से यूपीआई, क्रेडिट या डेबिट कार्ड तथा एनईएफटी के माध्यम से भुगतान के लिए शून्य लेन देन शुल्क के साथ विभिन्न उत्प्रवास संबंधी शुल्क का भुगतान हो सकेगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड आज से भोपाल में आम महोत्सव का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें प्राकृतिक रूप से पके आम की 2 दर्जन किस्मों को रखा गया है। ये महोत्सव 18 जून तक चलेगा।
आम महोत्सव में मध्य प्रदेश की पहचान बन चुके सुंदरजा, जरदालू, आम्रपाली, तोतापरी, केसर और राजापुरी जैसे कई आम हैं। नाबार्ड भोपाल के उप महाप्रबंधक अविनाश सिवलकर ने बताया कि आम महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान आमों की खास किस्में लेकर आए हैं। महोत्सव में प्रदर्शित मध्य प्रदेश का सुंदरजा आम खासतौर पर मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए है। इस आम में शुगर की मात्रा 5% से भी कम होती है। अपनी अलग खुशबू और गुणों के चलते इस आम को अब जीआई टैग भी मिल चुका है। इस महोत्सव में आप 2000 रूपये प्रति किलो वाला नूरजहां आम भी खरीद सकते हैं। ये आम 2 से 4 किलो तक वजन में ही आता है और केवल मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पैदा होता है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
बिहार में भी आज राज्य स्तरीय आम महोत्सव आमोस्त 2024 शुरू हुआ। 2 दिन के इस महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन परिसर में किया। इस अवसर पर श्री आर्लेकर ने कहा कि बिहार में आम के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने राज्य में आम की प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयां स्थापित करने पर जोर दिया। इस महोत्सव में 1000 से अधिक किसान, उद्यान और बागवानी विशेषज्ञ तथा वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन युद्ध में शांति प्रक्रिया का आधार तैयार करने के लिए आज स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में लगभग 100 देशों के प्रधानमंत्री और अन्य प्रतिनिधियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शामिल होने की भी संभावना है। ये बैठक यूक्रेन की पहल पर हो रही है। 2 दिन के इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना है। सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया है। भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है जो इस सम्मेलन में भाग लेगा। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कपूर करेंगे। इस सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्स, अमरीका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शामिल होंगे। भारत सहित दुनिया भर से 20 लाख से अधिक हज यात्री आज सऊदी अरब में हज अदा करेंगे। हज की 5 दिन की रस्म की शुरुआत करते हुए जायरीन ने कल की रात मिना में गुजारी। वे अब हज की मुख्य रस्म के लिए मैदान अराफात में जमा हो रहे हैं। इस वर्ष हज यात्रा में भारत से लगभग 1,75,000 से अधिक लोग गए हैं। इस वर्ष 5,000 से अधिक भारतीय महिलाएं हज यात्री बिना महरम या पुरुष अभिभावक के हज यात्रा पर गई हैं। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अर्ध चक्रासन की एक वीडियो क्लिप साझा की। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि स्वस्थ हृदय और बेहतर रक्त प्रवाह के लिए इस आसन का अभ्यास करें। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में श्रीलंका में 10 दिन का योग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय उच्चायोग द्वारा सांस्कृतिक केंद्र स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से योग को प्रस्तावित करना है। आज सुबह कोलंबो टाउन हॉल में परिवारों के लिए योग विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भारतीय संगठन सद्गमय फाउंडेशन और कोलंबो में गंगारामिया मंदिर के समर्थन से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे द्वीप में 22 जून तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में कनाडा के साथ खेलेगा। ये मैच फ्लोरिडा में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल आयरलैंड के साथ मैच रद्द हो जाने के बाद अमरीका ने सुपर 8 में जगह बना ली है। भारत के बाद सुपर 8 में जगह बनाने वाली अमरीका ग्रुप ए की दूसरी टीम है। इस बीच भारत के एन श्रीराम बालाजी और जर्मनी के आंद्रे बेगमैन की जोड़ी इटली में एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में बालाजी और बेगमैन का सामना मैक्सिको के मिगुएल एंजेल राइस वारेला और अर्जेंटीना के गुइडो आंद्रोजी की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। इस बीच अखिल भारतीय टेनिस संघ ने पेरिस ओलंपिक में पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी के खेलने की पुष्टि कर दी है। उधर यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज शाम ग्रुप ए में हंगरी और स्विट्जरलैंड तथा ग्रुप बी में स्पेन और क्रोएशिया की टीम आमने सामने होंगी। ग्रुप बी में ही इटली का मुकाबला अल्बानिया से होगा। इससे पहले म्यूनिख में कल रात प्रतियोगिता के पहले मैच में जर्मनी ने स्कॉटलैंड को 5-1 से हरा दिया। यूरोपीय चैंपियनशिप के पहले मैच में अब तक की ये सबसे बड़ी जीत है।
18वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन आज मुंबई में किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि दिल्ली, कोलकाता, पुणे और चेन्नई में भी इसकी समानांतर स्क्रीनिंग की जाएगी, जिससे चारों शहर भी इस शानदार रेड कार्पेट इवेंट के साक्षी बनेंगे।
बहुप्रतिष्ठित 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन आज नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री बिली एंड मॉली एन ऑटर लव स्टोरी से होगा। उद्घाटन फिल्म मुंबई सहित दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में एक साथ दिखाई जाएगी। इस वर्ष प्रतियोगिता खंडों के लिए रिकॉर्ड संख्या में 1018 प्रविष्टियां फिल्में प्रस्तुत की गयी। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों के लिए प्रतिष्ठित फिल्म विशेषज्ञों की 3 चयन समितियों द्वारा 118 फिल्मों का चयन किया गया है। इस वर्ष MIFF में 59 देशों 61 भाषाओं में 314 फिल्में, 8 विश्व प्रीमियर, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 18 एशिया प्रीमियर और 21 भारत प्रीमियर होंगे। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की आज घोषणा की। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 24 लेखकों और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए 23 लेखकों का चयन किया गया है। अकादमी ने बताया कि सभी चयनित लेखकों को 50,000 रूपये और एक ताम्र पट्टिका प्रदान की जाएगी। मुंबई के पास वडाला में कल रात 3 मंजिला इमारत की दीवार का एक हिस्सा गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। दमकल अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। सुश्री अरुंधति रॉय और केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन पर वर्ष 2010 में नई दिल्ली में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य 5 लोगों को न्यायालय की कार्यवाही की वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। और अंत में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों, देश के पूर्वोत्तर भागों तथा सिक्किम में बहुत तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मेघालय और असम में भी 18 जून तक वर्षा होने की संभावना है। अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी भागों में भीषण गर्मी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, बिहार, पंजाब, उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में कल कुछ स्थानों पर प्रचंड गर्मी रही। उत्तरी राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों तथा हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भी भीषण गर्मी जारी है। वहीं दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान आज 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 सम्मेलन के लिए इटली यात्रा संपन्न हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने विश्व मंच पर भारत का दृष्टिकोण रखा। स्विट्जरलैंड में आज यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए। सिक्किम में लगातार हो रही तेज वर्षा के कारण राज्य के उत्तरी भाग में कई जगह भूस्खलन, 1,200 से ज्यादा पर्यटक फंसे। और आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट में आज शाम फ्लोरिडा में अंतिम ग्रुप मैच में भारत का मुकाबला कनाडा से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।